डेनियल की पुस्तक संख्या 146
भविष्यवाणी के धागों को सुलझाना अंतिम राष्ट्रपति तानाशाही और आसन्न रविवार का कानून।
हम उस भविष्यवाणी संबंधी वातावरण की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं जो तब विद्यमान होता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम राष्ट्रपति शीघ्र आने वाले रविवार के कानून की ओर ले जाने वाले इतिहास में एक निरंकुश शासक के रूप में सशक्त हो जाता है। कुछ भी अलग थलग होकर नहीं होता और पृथ्वी के पशु की जनता ट्रंप के बारे में अपने आकलन में काफी हद तक बराबर बंटी हुई है। जो उसके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति रखते हैं वे आसानी से देख सकते हैं कि उसे दलदल साफ क्यों करना है और ये क्यों लगभग असंभव है कि ऐसा हो जब तक ट्रंप तानाशाह की भूमिका न अपना लें। सबसे शक्तिशाली तानाशाह वे होते हैं जिनके प्रयासों को आबादी का बड़ा प्रतिशत समर्थन देता है। हिटलर के सत्ता में आने से पहले ब्रेड की एक लोई खरीदने के लिए नकदी से भरा एक ठेला लगता था।
हिटलर ने उस स्थिति को पलट दिया और यद्यपि जर्मन्स उस इतिहास के अधिकांश हिस्से को स्वीकार करना नहीं चाहते, हिटलर को अपने कार्य के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त था। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे विश्व के सामने खड़ी समस्याएं नागरिकों के बीच भेद पैदा कर रही हैं और अब रेखाएं खींची जा रही हैं। क्रांतिकारी युद्ध से लेकर 1798 तक का समय तैयारी की एक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जो 144,000 की मुहरबंदी के समय से मेल खाता है। पैट्रियट एक्ट ने क्रांतिकारी युद्ध की आध्यात्मिक पुनरावृत्ति की शुरुआत को चिह्नित किया। यीशु हमेशा अंत को आरंभ से दर्शाते हैं और पृथ्वी का पशु एक क्रांतिकारी युद्ध से शुरू हुआ था तो उसका अंत भी एक क्रांतिकारी युद्ध से होगा। पहला शाब्दिक था, अंतिम आध्यात्मिक है।
अमेरिकी गृह युद्ध सचमुच हुआ था और अंतिम दिनों में फिर दोहराया जाएगा। इसने पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति के आगमन को चिह्नित किया जो अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति का प्रतिरूप है। रिपब्लिकन पार्टी का उदय दास प्रथा विरोधी पार्टी के रूप में हुआ ताकि डेमोक्रेट्स की लंबे समय से स्थापित दास प्रथा समर्थक पार्टी का विरोध किया जा सके। उसी राजनीतिक बहस ने गृहयुद्ध और लिंकन की राष्ट्रपति पद प्राप्ति को जन्म दिया। इसलिए पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति को गृहयुद्ध से अलग करना असंभव है। अतः अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति को गृहयुद्ध की तत्काल प्रस्तावना विरासत में मिलेगी। यीशु ने आध्यात्मिक जगत को समझाने के लिए प्राकृतिक जगत का उपयोग किया। ड्रैगन की पार्टी का पिता जूट का पिता है और डेमोक्रेटिक पार्टी की पहचान जूट है। इस रणनीति की एक क्लासिक मिसाल उनका ये दावा है कि वे अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी है।
झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं पर भीतर से वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या लोग कांटों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा वृक्ष अच्छा फल देता है परंतु बुरा वृक्ष बुरा फल देता है। अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं दे सकता और न ही बुरा वृक्ष अच्छा फल दे सकता है। जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता उसे काटकर आग में डाल दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। मत्ती 7:15 नकडा।
किसी पेड़ की जड़ें तय करती हैं कि वो कौन सा फल देगा और डेमोक्रेटिक पार्टी की जड़ों में दास प्रथा का समर्थन है, रिपब्लिकन पार्टी की जड़ों में दास प्रथा का विरोध है।
हे प्रभु, जब मैं तुझसे वाद विवाद करता हूँ तब तू धर्मी है, तो भी तेरे न्यायों के विषय में मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। दुष्टों का मार्ग क्यों फलता फूलता है? जो अत्यंत कपट से काम करते हैं वे सब क्यों सुखी हैं? तूने उन्हें लगाया है, हाँ वे जड़ पकड़ गए हैं, वे बढ़ते हैं, हाँ फल भी लाते हैं। तू उनके मुंह में निकट है परंतु उनके हृदय से दूर है। यिर्मयाह 12:1-2।
आगामी गृहयुद्ध को धनाढ्य लोग, जैसा कि सिस्टर व्हाइट उन्हें कहती हैं, के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जो राष्ट्रों की संपदा बटोरने के लिए बाजार पर नियंत्रण रखते हैं जबकि गरीबों को पैरों तले रौंदते हैं।
भारत, चीन, रूस और अमेरिका के शहरों में हजारों पुरुष और महिलाएं भुखमरी से मर रहे हैं। धनाढ्य लोग, क्योंकि उनके पास शक्ति है, बाजार को नियंत्रित करते हैं। वे जितना भी हासिल कर सकते हैं उसे कम दरों पर खरीद लेते हैं और फिर उसे बहुत अधिक बढ़ी हुई कीमतों पर बेचते हैं। इसका मतलब गरीब वर्गों के लिए भुखमरी है और इसका परिणाम एक गृहवाड़ होगा। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 5, 303।
लिंकन के समय का गृह युद्ध वास्तविक था
और उसने वास्तविक दासता के मुद्दे को संबोधित किया। ड्रैगन प्रेरित वैश्विकतावादी आखिरी दिनों में एक ऐसा ग्रुथ युद्ध पैदा कर रहे हैं जो मध्य वर्ग को समाप्त करने के उनके प्रयासों पर आधारित है, जिससे केवल अति धनाढ्य अभिजात वर्ग और अति गरीब बंधुआ किसान ही शेष रह जाए। यही मध्य वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है, और जब उसे हटाया जाता है तो सामंतवाद लागू होने के विरुद्ध कोई ढाल नहीं रह जाती। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य उपलब्धि ये थी कि उसने सामंतवाद की व्यवस्था का अंत किया, जिसे वैश्विकतावादी अब मध्य वर्ग को हटाकर फिर से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विकतावादियों की योजना का बड़ा हिस्सा अवैध प्रवासियों से मध्य वर्ग को भर देने पर आधारित है, जिससे आर्थिक उत्पादन घटता है, मजदूरी कम होती है और राज्य के कल्याण तंत्र का आकार बढ़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले महामंदी के दौरान रोमन कैथोलिक पादरी फादर चार्ल्स कॉगलिन अपने रेडियो प्रसारणों के लिए प्रसिद्ध हुए, जो देश भर में लाखों श्रोताओं तक पहुंचते थे। उनके रेडियो प्रसारणों का प्रभाव हाल के अतीत में रश लिम्बॉ के प्रभाव जैसा था। कॉगलिन ने अपने रेडियो मंच का उपयोग राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दों सहित व्यापक विषयों पर चर्चा करने के लिए किया। उन्होंने शुरू में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और उनके न्यू डील का समर्थन किया। कॉगलिन के रेडियो प्रसारण, जो अक्सर उत्तेजक और विवादास्पद होते थे, ने उन्हें अमेरिकी राजनीति में एक विभाजक व्यक्तित्व बना दिया। यद्यपि उनके पास बड़ा और समर्पित अनुयायी वर्ग था, उन्हें अपने चरमपंथी विचारों के लिए विभिन्न हलकों से आलोचना और निंदा का सामना भी करना पड़ा। कॉगलिन के प्रारंभिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपनाया और वे उनकी न्यू डील नीतियों का खाका बन गए, जिनके जरिए संयुक्त राज्य में लगातार बढ़ती सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और कल्याण प्रणाली जैसे अभिशापों की शुरुआत हुई। उनकी न्यू डील नीतियां उनकी विरासत की पहचान बन गईं और वे उस भविष्य सूचक परिदृश्य का एक तत्व थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध तक ले गया और उसके बाद भी बना रहा। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। रूजवेल्ट की न्यू डील नीतियों के क्रियान्वयन के कारण महामंदी संयुक्त राज्य में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक समय तक चली। रूजवेल्ट एक डेमोक्रेट थे और इसलिए एक ड्रैगन प्रेरित वैश्विकतावादी। उनके द्वारा शुरू की गई न्यू डील नीतियां अत्यंत धनी और अत्यंत निर्धन लोगों का समाज बनाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा थीं। गृहयुद्ध की वास्तविक दास्ता उस आध्यात्मिक और आर्थिक दास्ता का प्रतिनिधित्व करती है जो अब वॉर्प गति से तेज होती जा रही है, क्योंकि आधुनिक बाबुल के वैश्विकतावादी अरबपति व्यापारी व्यापक अवैध आप्रवासन को वित्त पोषित कर रहे हैं, जिसे उनकी समझ के अनुसार रूजवेल्ट की न्यू डील को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए रचा गया है। अंतिम राष्ट्रपति, जिसका सामना तृतीय विश्व युद्ध से होगा, को उस सामाजिक निर्भरता के कार्यक्रम के संकट का भी सामना करना पड़ेगा, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ने लागू किया था। प्रेरणा इस तथ्य की पहचान करती है और ये भी बताती है कि अंतिम दिनों के नेता इस समस्या का समाधान कैसे करें ये नहीं जानेंगे।
शिक्षाविदों और राजनेताओं में भी ऐसे बहुत कम हैं जो समाज की वर्तमान स्थिति के अंतर्निहित कारणों को समझते हैं। जो शासन की बागडोर संभाले हुए हैं, वे नैतिक पतन, गरीबी, दरिद्रता और बढ़ते अपराध जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वे व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक सुरक्षित आधार पर स्थापित करने के लिए व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे हैं। यदि लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर अधिक ध्यान दें तो उन्हें उन समस्याओं का समाधान मिल जाता जो उन्हें उलझाती हैं। धर्मग्रंथ मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले संसार की स्थिति का वर्णन करते हैं। जो लोग लूट और उगाही द्वारा भारी धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनके विषय में लिखा है, तुमने अंतिम दिनों के लिए धन का ढेर लगा लिया है। देखो, तुम्हारे खेतों की फसल काटने वाले मजदूरों की मजदूरी, जिसे तुमने धोखे से रोक रखा है, पुकार रही है, और जिन्होंने फसल काटी उनकी पुकारें सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई हैं। तुमने पृथ्वी पर सुख सुविधा और विलासिता में जीवन बिताया है। तुमने अपने हृदयों को मोटा किया है जैसे वध के दिन। तुमने धर्मी को दोषी ठहराया और मार डाला, और वो तुम्हारा विरोध नहीं करता। याकूब 5:3-13, टेस्टिमोनीज खंड 9 तेरा
अंतिम राष्ट्रपति शासन की बागडोर संभालेगा, लेकिन वो नैतिक भ्रष्टाचार, गरीबी, पॉपुलरिज्म और बढ़ते अपराध की समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। न ही वो व्यापार संचालन को अधिक सुरक्षित आधार पर स्थापित कर सकेगा। ये सभी समस्याएं अंतिम दिनों के बैंकरों और अरबपति व्यापारियों से जुड़ी हुई हैं। पॉपुलरिज्म का प्रयोग उन लोगों की अवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्थानीय सरकारों या धर्मार्थ संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली गरीब राहत या कल्याण पर निर्भर रहते हैं। अनेक समाजों में पॉपुलरिज्म सामाजिक कलंक से जुड़ा रहा है और अक्सर गरीबी का अनुभव कर रहे लोगों के हाशिए पर धकेले जाने और उनके साथ भेदभाव का कारण बना है। अमेरिकी इतिहास में वो कार्यक्रम जिसने पॉपुलरिज्म पैदा किया है वही कार्यक्रम है जिसे कथित तौर पर गरीबी में फंसे लोगों को स्वयं ऊपर उठने में सहायता देने के लिए राहत प्रदान करने हेतु बनाया गया था। इसके बजाय उसने उन निर्धनों को आर्थिक गुलामी में बांधे रखने के लिए सरकारी कल्याण की एक व्यवस्था पैदा की। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र ने संचालन शुरू किया। इससे पहले दो विश्व युद्धों से ये दूसरा साक्ष्य मिला कि सातवां राज्य संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी के सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की उस भूमिका की पहचान की जो प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास में अपनाई गई थी और उन विश्व बैंकरों व व्यापारियों के सामंती व्यवस्था में लौटने के इरादों की भी, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रदर्शित हुआ। ये सभी योजनाएं एक विश्व सरकार, अत्यंत अमीरों द्वारा अत्यंत गरीबों पर शासन करने वाली आर्थिक व्यवस्था और एक विश्व वित्तीय प्रणाली जो केवल उन्हीं को भाग लेने देगी जिन्हें वो उपयुक्त समझे, ड्रैगन से आई जो आठवें राष्ट्रपति जो सात में से है के साथ युद्धरत है। इन कारकों से प्रतिपादित तर्क स्पष्टतः ऐसे राष्ट्रपति का निरूपण करता है जो समस्या समाधान के अपने दृष्टिकोण में तानाशाही रुख अपनाने के लिए स्वयं को विवश पाएगा। हम केवल उस भविष्यवाणी संबंधी वातावरण की पहचान कर रहे हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन प्रकट करता है कि वो पृथ्वी के पशु के अंतिम राष्ट्रपति के इतिहास के दौरान उद्घाटित होगा। पिछले लेख में हमने द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी से एक अनुच्छेद का संदर्भ दिया था जहां वो ये बताती है कि सांसारिक समृद्धि को रविवार के कानून से पहले हटा लिया जाएगा। वो अनुच्छेद अंतिम दिनों की अनेक भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं की पहचान करता है और जिन बिंदुओं का वो उल्लेख करती है उनकी पूर्ति पशु की प्रतिमा की परीक्षा के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में और तत्पश्चात विश्व में होती है। वो उन दो मुद्दों की पहचान करती है जिनका उपयोग शैतान संसार को वश में करने के लिए करता है, आत्मवाद और रविवार की पवित्रता। शैतान द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले चंगाई के चमत्कारों का संदर्भ देते हुए वो हमारे समय का एक और भविष्यवाणी संबंधी मुद्दा पहचानती है।
आत्मा की अमरता और रविवार की पवित्रता, इन दो बड़े भ्रमों के माध्यम से शैतान लोगों को अपने धोखे के अधीन कर लेगा। पहला जहां आत्मवाद की नींव रखता है वही दूसरा रोम के साथ सहानुभूति का बंधन बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोटेस्टेंट सबसे आगे होंगे जो इस खाई के पार अपने हाथ बढ़ाकर आत्मवाद का हाथ थामेंगे। वे इस गर्त के ऊपर से हाथ बढ़ाकर रोमन सत्ता से हाथ मिलाएंगे और इस त्रिविध संघ के प्रभाव में ये देश अंतःकरण के अधिकारों को रौंदने में रोम के पदचिह्नों का अनुसरण करेगा। जैसे जैसे आत्मवाद आज के नाम मात्र के मसीही धर्म की अधिक निकट नकल करता है वैसे वैसे उसमें धोखा देने और फंसाने की शक्ति बढ़ती जाती है। स्वयं शैतान भी आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप अपने को बदल लेता है। वो प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होगा। आत्मवाद के माध्यम से चमत्कार किए जाएंगे, बीमार चंगे होंगे और अनेक अविवादनीय आश्चर्य कर्म किए जाएंगे। और क्योंकि आत्माएं बाइबल में विश्वास का दावा करेंगी और कलीसिया की व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान प्रकट करेंगी, इसलिए उनके कार्य को दिव्य शक्ति के प्रकटीकरण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कथित ईसाइयों और अधर्मियों के बीच का भेद अब मुश्किल से ही पहचाना जाता है। कलीसिया के सदस्य संसार जो प्रेम करता है वही प्रेम करते हैं और उनके साथ मिल जाने को तत्पर हैं। और शैतान ने ठान रखा है कि उन्हें एक ही समूह में मिला दे और इस प्रकार सबको आत्मवाद के दल में खींचकर अपने उद्देश्य को सुदृढ़ करे। पोपवादी जो चमत्कारों को सच्ची कलीसिया का सुनिश्चित चिन्ह बताकर घमंड करते हैं, इस चमत्कार करने वाली शक्ति से आसानी से धोखा खा जाएंगे और प्रोटेस्टेंट भी सत्य की ढाल को फेंक देने के कारण भ्रमित हो जाएंगे। पोपवादी, प्रोटेस्टेंट और सांसारिक लोग समान रूप से भक्ति का केवल रूप स्वीकार करेंगे, उसकी सामर्थ्य नहीं, और वे इस एकता में संसार के परिवर्तन तथा लंबे समय से प्रतीक्षित सहस्राब्दी के आगमन का एक भव्य आंदोलन देखेंगे। अध्यात्मवाद के माध्यम से शैतान मानव जाति का हितेशी बनकर प्रकट होता है, लोगों की बीमारियों को चंगा करता है और ये दावा करता है कि वो धार्मिक विश्वास की एक नई और अधिक उच्चतर प्रणाली प्रस्तुत कर रहा है, परंतु उसी समय वो एक विनाशक के रूप में कार्य करता है। उसके प्रलोभन असंख्य लोगों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, असंयम विवेक को सिंहासन से उतार देता है और उसके पीछे इंद्रिय भोग, कलह और रक्तपात आते हैं। शैतान युद्ध में आनंदित होता है क्योंकि युद्ध आत्मा की सबसे निकृष्ट वासनाओं को भड़का देता है और फिर दुर्गुणों और रक्त में डूबे अपने शिकारों को अनंत काल में बहा ले जाता है। उसका उद्देश्य राष्ट्रों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाना है, क्योंकि इस प्रकार वो लोगों के मनों को परमेश्वर के दिन में खड़े होने की तैयारी के कार्य से भटका सकता है। महान संघर्ष, पांचातर अपनातर आठ में लिखवाए।
शैतान अपना पराकाष्ठात्मक कार्य रविवार के कानून के समय पूरा करता प्रतीत होता है, उससे पहले नहीं। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 के पद 11 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलता है, उसके बाद ही पद 13 में शैतान स्वर्ग से आग उतारता हुआ दिखाई देता है। इसी की ओर बहन व्हाइट भी संकेत करती है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपशाही की संस्था को प्रवर्तित करने वाली अज्ञप्ति द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को धार्मिकता से पूर्णतः पृथक कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी सत्ता का हाथ थाम लेगा, जब वो उस गर्त के ऊपर से पहुंचकर आत्मवाद के साथ हाथ मिला लेगा, जब इस त्रिगुणी संघ के प्रभाव में हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतंत्रीय शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोपीय मिथ्याओं और भ्रांतियों के प्रसार के लिए प्रावधान करेगा, तब हम जान सकेंगे कि शैतान की अद्भुत कार्यवाही का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5 451।
रविवार के कानून से पहले पशु की प्रतिमा की परख के समय के दौरान, जो 144,000 की मोहरबंदी का समय भी है और जहां हर दर्शन का प्रभाव प्रकट होता है, अजगर की शक्ति का एक प्रकटीकरण होगा जो झूठी चंगाई के चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाबुल की वेश्या को सभी राष्ट्रों को धोखा देने वाली के रूप में पहचाना गया है।
और तुझमें दीपक का प्रकाश फिर कभी नहीं चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का स्वर तुझमें फिर कभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के बड़े लोग थे, क्योंकि तेरे जादू टोने से सब जातियां धोखा खा गईं। प्रकाशित वाक्य 18:23।
शब्द सोर्सरीज यूनानी शब्द फार्माकेया है, जिसका अर्थ दवा या फार्मेसी होता है। यह शब्द यूनानी शब्द G5332 से निकला है, जिसका अर्थ है एक दवा अर्थात मंत्र प्रभाव वाला पिए, एक दवा विक्रेता या फार्मासिस्ट या विष देने वाला। रविवार के कानून से पहले के अंतिम दिनों में जिस विभाजनकारी माहौल को आठवें और अंतिम राष्ट्रपति को विरासत में मिलेगा, उसमें योगदान देने वाला एक मुद्दा फार्मास्यूटिकल उद्योग का काम होगा, जिसका प्रतिनिधित्व एंथनी फौची और चीन वायरस करते हैं। फौची और चीन दोनों ही अजगर शक्ति के प्रतिनिधि हैं और फौची के अंगुलियों के निशान सीधे HIV विषाणु के निर्माण तक अनुरेखित किए जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, जिसका प्रतिनिधित्व अरबपति बिल गेट्स जैसे पुरुष करते हैं, वो वही गुण है जो मूसा के समय में फिरौन द्वारा शिशुओं का संहार करने के प्रयत्न में और मसीह के समय में हेरोदेस द्वारा उसी कार्य के प्रयत्न में प्रकट हुआ था। आधी जनसंख्या चीन विषाणु से भ्रमित हो गई और आप अब भी लोगों को मुखावरण पहने हुए देख सकते हैं जो किसी भी विषाणु को नहीं रोकते। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
शैतान प्रकृति के तत्वों के माध्यम से भी काम करता है ताकि अप्रस्तुत आत्माओं की अपनी फसल बटोर सके। उसने प्रकृति की प्रयोगशालाओं के रहस्यों का अध्ययन किया है और परमेश्वर जितनी अनुमति देता है उतनी सीमा तक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए वो अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है। जब उसे अय्यूब को क्लेश देने की अनुमति मिली तो किस प्रकार भेड़ों के झुंड और मवेशियों के रेवड़, सेवक, घर, बच्चे सब कितनी शीघ्रता से नष्ट हो गए, मानो पल भर में ही एक के बाद एक विपत्ति आ पड़ी। विध्वंसक की शक्ति से अपनी सृष्टि की रक्षा करना और उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना परमेश्वर ही है, परंतु मसीही जगत ने यहोवा की व्यवस्था का तिरस्कार किया है और प्रभु ठीक वैसा ही करेगा जैसा उसने घोषित किया है। वह पृथ्वी से अपनी आशीषें वापस ले लेगा और जो उसकी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं तथा दूसरों को भी वैसा ही करने की शिक्षा देकर बाध्य कर रहे हैं, उनसे अपनी संरक्षणकारी देखभाल हटा लेगा। जिन्हें परमेश्वर विशेष रूप से नहीं बचाता, उन सब पर शैतान का नियंत्रण रहता है। अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ का पक्ष लेगा और उन्हें समृद्ध करेगा और दूसरों पर विपत्ति लाएगा तथा मनुष्यों को ये विश्वास दिलाएगा कि उन्हें क्लेश परमेश्वर दे रहा है। मनुष्यों की संतान के सामने एक ऐसे महान चिकित्सक के रूप में प्रकट होते हुए जो उनकी सभी बीमारियां ठीक कर सकता है। वो रोग और विपत्ति लाएगा जब तक कि घनी आबादी वाले नगर उजाड़ और वीरान न हो जाएं। वो अब भी कार्यरत है। समुद्र और स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं और विपत्तियों में, भीषण दावानलों में, प्रचंड बवंडरों और भयानक ओलावृष्टियों में, तूफानों, बाढ़ों, चक्रवातों, ज्वारी लहरों और भूकंपों में, हर स्थान पर और हजारों रूपों में शैतान अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। वो पकती हुई फसल को बहा ले जाता है और उसके बाद अकाल और क्लेश आते हैं। वो वायु में घातक दूषण मिला देता है और महामारी से हजारों लोग मर जाते हैं। ये विपत्तियां दिन प्रतिदिन अधिक बार और अधिक विनाशकारी होती जाएंगी। विनाश मनुष्य और पशु दोनों पर आएगा। पृथ्वी विलाप करती है और मुरझा जाती है। घमंडी लोग क्षीण हो जाते हैं। पृथ्वी भी अपने निवासियों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है, विधि को बदल दिया है, सनातन वाचा को तोड़ दिया है। यशाया 24:4-5। और तब महान छलिया लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर की सेवा करने वाले ही इन विपत्तियों का कारण है। वो वर्ग जिसने स्वर्ग के रोष को भड़काया है, अपने सारे कष्टों का दोष उन पर मढ़ेगा जिनकी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता उल्लंघनकर्ताओं के लिए सदा बनी रहने वाली फटकार है। ये घोषणा की जाएगी कि लोग रविवार के विश्राम दिन का उल्लंघन करके परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, कि इस पाप ने वे विपत्तियां लाई हैं जो तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक रविवार का पालन कठोरता से लागू नहीं किया जाएगा। और जो लोग चौथी आज्ञा का आग्रह करते हैं और इस प्रकार रविवार के प्रति आदर को नष्ट करते हैं, वे ही लोगों के उपद्रवी हैं जो उन्हें दैवी कृपा और लौकिक समृद्धि की पुनर्स्थापना से रोकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दास के विरुद्ध प्राचीन काल में जो आरोप लगाया गया था वो फिर दोहराया जाएगा और उतने ही दृढ़ आधारों पर। और ऐसा हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा तो अहाब ने उससे कहा, क्या तू ही है जो इसराइल को क्लेश देता है? उसने उत्तर दिया, मैंने इसराइल को क्लेश नहीं दिया, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया है और तूने बालों का अनुसरण किया है। 1 राजा 18:17-18। जब झूठे आरोपों से लोगों का क्रोध भड़काया जाएगा, तब वे परमेश्वर के दूतों के प्रति वही व्यवहार करेंगे जो धर्मत्यागी इसराइल ने एलिया के साथ किया था। अध्यात्मवाद के माध्यम से प्रकट होने वाली चमत्कारकारी शक्ति उन लोगों के विरुद्ध अपना प्रभाव डालेगी जो मनुष्यों के बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानना चुनते हैं। आत्माओं से प्राप्त संदेश ये घोषणा करेंगे कि रविवार को अस्वीकार करने वालों को उनकी त्रुटि का एहसास कराने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, ये कहते हुए कि देश के कानूनों का पालन परमेश्वर के नियम के समान किया जाना चाहिए। वे संसार में व्याप्त घोर दुष्टता पर विलाप करेंगे और धार्मिक शिक्षकों की गवाही का समर्थन करेंगे कि नैतिकता की गिरी हुई अवस्था का कारण रविवार का अपतित्रीकरण है। जो कोई उनकी गवाही को स्वीकार करने से इनकार करेगा, उसके विरुद्ध उत्पन्न होने वाला आक्रोश बहुत बड़ा होगा। महान विवाद 859-859।